ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூர் அபவுட் டு லிசன் யதி பஞ்சகம் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ சிதம்பரானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஆப் சிப்கே ஹே, இஸ்கா மத்தலப் யே நஹீ ஹே கி வோ சுக்ரூப் ஹே. நஹீ ஜி, யே பக்கி பாத் ஹே. க்யோ? க்யோகி பீடா சப்கோ ஹே, क्योंकि दुखी सब है. दुखी सब है, सबका दुख. इस मंच पर बोलने वालों की बात सच साबित करता है, हमारी बात साबित करता है, आचार्य की बात साबित करता है, कि भागवत की बात सही साबित करता है. क्या सभी दुखी है? लेकिन आपका संसार छूट नहीं रहा है, यह साबित करता है कि वो दुख महसूस नहीं कर पा रहे हो. कि क्यों है? आपको लगता है कि महाराज पैसा नहीं है इसलिए दुखी है, वो हो जाता तो फिर कोई दुख नहीं था. आपको यह लगता है, लेकिन दुख का कारण पैसे का अभाव नहीं है, ध्यान रखना. तो दुख का कारण संसार का स्वभाव है, ये समझ लो. नहीं आई बात समझ में? दोबारा बोलूं, दुख का कारण धन का अभाव नहीं है. ध्यान देना, फिर ध्यान देना, समझना इस बात को. दुख का कारण धन का अभाव नहीं है, दुख का कारण संसार का स्वभाव है. संसार है ही ऐसा. तो हमने गरीब आदमी भी देखा है, ऐसा व्यक्ति भी देखा है. आप आश्चर्य करेंगे कि उसके पास में पैसे के नाम पर 10 रुपए भी नहीं है, 10 रुपए भी नहीं है, लेकिन वो आदमी खुश मस्त है. कहता है महाराज भोजन हो गया, बस अब काय की चिंता, कल देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, क्या फिक्र करना. वो खुश है, वो प्रसन्न है. अगर धन का अभाव दुख का कारण होता तो उस आदमी को सबसे ज्यादा दुख होना चाहिए था, जिसके पास पैसा नहीं है. लेकिन मुझे नजर आता है कि सबसे ज्यादा दुखी वे हैं जिनके पास धन है, और जितना ज्यादा धन है उतने ज्यादा दुखी हैं, और जितना ज्यादा साम्राज्य बढ़ता गया उतने ज्यादा दुखी होते गए. जरा मुझे बताइए, और सोच के और समझ के फिर कहिए कि दुखी शबरी ज्यादा है कि दुखी रावण ज्यादा है. बात समझने की है कि रावण सोने की लंका में है और शबरी झोपड़ी में है, कि रावण का साम्राज्य, रावण का ऐश्वर्य, रावण का वैभव इंद्र से अधिक है. इंद्र की अमरावती सोने की नहीं है, स्वर्ण की नहीं है, लेकिन रावण की नगरी स्वर्ण की है. कमाल की बात है. इंद्र से अधिक वैभवशाली है रावण, इंद्र से अधिक शक्तिशाली है रावण, इंद्र से अधिक ऐश्वर्यवान है रावण. इंद्र को भी भय है किसी से, लेकिन ये रावण ऐसा है इसको किसी से भय नहीं है, इससे सब डरते हैं. सब सब काल भी डरता है कि शनि भी डरता है, सब डरते हैं. तो रावण है, और दूसरी तरफ शबरी के पास. अब जरा सोचो, जरा सोचो कि अगर उसके पास कुछ होता तो भगवान को बेर की जगह रसगुल्ले नहीं खिलाती. तो जिसके पास भगवान को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था, उसके पास किस धन की उम्मीद आप कर सकते हैं? जरा बताइए, कोई धन है शबरी के पास? नहीं है. लेकिन सुखी कौन है? शबरी के जीवन में दुख है ही नहीं, हमें नजर आता, हमको लगता बड़ी दुखी होगी. शबरी दुखी नहीं. लोगों को सुदामा दुखी नजर आते हैं, लेकिन सुदामा दुखी नहीं है. मजे की बात ध्यान रखना, सुदामा को आप अपनी कंडीशन में, आप अपनी कंडीशन से कंपेयर करते हैं तब कहते हैं कि ये दुखी होंगे. मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप अपनी अवस्था से तुलना करते हैं सुदामा की तो लगता है कि आदमी बड़ा दुखी होगा. नहीं जी, वो दुखी नहीं है. क्यों नहीं दुखी है कि अगर दुखी होते तो कम से कम एक बार तो शिकायत करते भगवान से। सुदामा की तुलना में हम ज्यादा सुखी हैं, है ना? बोलो, थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, है ना? सुदामा की तुलना में हम ज्यादा सुखी हैं साधनों की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से। सुदामा से ज्यादा साधन हमारे पास हैं, है ना? लेकिन फिर भी हमारी शिकायतों की लाइन लगी है भगवान के सामने ही, कि फिर भी हम शिकायत करते हैं और रोज शिकायत करते हैं कि ये नहीं हुआ, ये भगवान बस ये इतना हो जाए, ये भगवान ये और, ये भगवान इतना और, ये भगवान अब नहीं, बस अब सहन नहीं होता, इतना और, रोज रोज रोज। और सुदामा के जीवन को पूरा पढ़ लीजिए, सुदामा ने एक बार भी नहीं कहा कि माला जपते जपते घिस गई, तू कुछ तो ध्यान रख। वो खुश है, सुदामा दुखी नजर आते हैं लेकिन है नहीं। इसलिए भगवान सुखदेव जब उनकी महिमा का वर्णन करते हैं तो कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। पूरे श्लोक में ये नहीं कहा कि सुदामा दुखी थे, प्रशांत आत्मा की जगह कहते थे दुखात्मा, कह देते कि बड़े दुखी आदमी थे, कि बड़े परेशान हाल थे, कि बड़े गरीब थे, कि बड़े दरिद्र थे। और सुखदेव जैसा व्यक्ति तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि सुखदेव तो आनंद आ रहा है सुदामा की अवस्था को देखकर, उनकी मस्ती को देखकर। इसको ऐसे ही समझो कि जैसे मीरा का जहर तुम्हें जहर नजर आता है, मीरा को नहीं। ध्यान देना, अगर मीरा को जहर नजर आ रहा होता तो पी ही नहीं पाती, अगर जहर दिखाई पड़ता तो पी ही नहीं सकती थी। तो जहर समझ के पिया नहीं जी, प्रसाद समझ के पिया। ईश्वर ने दिया है अच्छा ही होगा, पान करो। तो जैसे मीरा का जहर ईश्वर का प्रसाद समझ करके पान किया गया और उसने मस्ती के साथ पान किया, ऐसी ही सुदामा के दुख, सुदामा का अभाव, सुदामा की गरीबी सुदामा ने प्रसाद समझ करके और उसको जिया, इसलिए दुखी नहीं है, इसलिए शिकायत नहीं है। कमाल की बात होती, आश्चर्य होता है कि सुदामा गए भी भगवान के पास, मिलने के लिए भी पहुंचे, दर्शन भी किया, लेकिन तब भी नहीं कह रहे हैं कि जितना गुजरा जाने दो, अब तो आ गए हैं कुछ तो दे दो, नहीं कह रहे हैं। क्या मांगना? और जिसे भगवान मिल चुके हैं उसे और क्या मांगना? मांगते तो वे हैं जो परमात्मा से दूर है। तो संसार का अभाव कष्ट का कारण नहीं, संसार का स्वभाव कष्ट का कारण है। संसार है ही ऐसा कि इससे चिपकेंगे तो आपको दुख होगा ही होगा, आप जलेंगी। प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यपु ने, क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी इस संसार में तो आग लगी है, उनको दिखाई पड़ गया, हमें नजर नहीं आता। क्यों? वो सब त्राय त्राय कर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, सब मरे जा रहे हैं, सब परेशान है। प्रहलाद जी कहते हैं, तो अच्छा क्या लगता है? वनंग तो यद धरिमाश्रय, तो बोले अच्छा यही लगता है कि साहब ये आग लगी हुई दुनिया में आग लगाओ, इसको बुझाने की चेष्टा मत करो। अच्छा, संसार में आग लगी है, हम इसको बुझाने में लगे हुए कि अब बुझ जाएगी, अब बुझ जाएगी, लेकिन जितना बुझाने की चेष्टा करते हो वो उतनी भड़क उठती। तो हम पानी की जगह घी डाल रहे हैं बुझाने के लिए, और बढ़ रही है, और बढ़ रही है, आग खत्म नहीं हो रही। तो प्रहलाद जी कहते हैं, बुझाने के चक्कर में छोड़ो भैया, ये बुझेगी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ज्वालामुखी बुझ सकता है? कोई बुझा सकता है? कि घर में लगी हुई आग को आप बुझाने की चेष्टा करें, बुझा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जरा ज्वालामुखी को बुझा के दिखाओ। ये जब फटता है, कोई मशीन है अभी तक ऐसी कि जो उसको बुझा सके? नहीं बुझा सकता। इस संसार के दुख ज्वालामुखी से कम नहीं है, इस संसार में लगी हुई आग उस ज्वालामुखी से कम नहीं है। जैसे ज्वालामुखी को बुझाने के लिए कोई फायर ब्रिगेड नहीं बनी, ऐसे संसार की आग को बुझाने के लिए कोई उपाय नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं, कोई उपाय नहीं है, लगे रहो, अगर आप जाओगे तो खुद जलोगे और मरोगे, रास्ता क्या है, एक ही है। रंग तो यदरिमा चेत, बुझाना छोड़ो, चलो यहां से वापस चलते हैं। कहां? जहां शांति ही शांति है, जहां सुकून ही सुकून है, जहां आनंद ही आनंद है, जहां मजा ही मजा है, जहां खुशियां ही खुशियां हैं, जहां मस्ती ही मस्ती है। वेदांत वाक्य सुझदार मंत्र ये कॉपी न बनता खलवाग्य बनता, यहां चलते हैं, इन वाक्यों में रमण करते हैं, ऐसे बगीचे में चलते हैं कि जहां फूल ही फूल हैं, पुष्प ही पुष्प हैं, कांटों का नाम निशान नहीं, जहां कांटे की कल्पना ही नहीं है, जहां कांटे की संभावना ही नहीं है, जहां कांटा शब्द ही नहीं है, नेपोलियन की तरह कि उसकी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है, ऐसे ही वेदांत वाक्य सुसदार मंतो, वेदांत वाक्य सुसदार मंत, वेदांत वाक्यों में रमण करने वाले जो लोग हैं, या वेदांत वाक्य का जो बगीचा है, जो अध्यात्म का बगीचा है, उस बगीचे में कांटा शब्द ही नहीं है, अध्यात्म की डिक्शनरी में दुख शब्द ही नहीं है। कमाल की बात है, आप आश्चर्य करेंगे। हमारे वेदांत में एक शब्द बोलते हैं अत्यंताभाव, दुख का अत्यंताभाव। अत्यंताभाव ऐसा भाव है कि जो है ही नहीं, खत्म सदा के लिए, ऐसा नहीं ये हटा दिया, ये अभाव हो गया पुष्प का, है ना, ये माला रखी थी अब नहीं है, ये अभाव है ना, समझ में आया, अभाव है। लेकिन वेदांत कहते हैं ये अभाव नहीं है, क्यों, यहां नहीं है लेकिन नीचे तो है, समझ, आपकी दृष्टि में अभाव हो गया लेकिन अभाव नहीं है, आपकी दृष्टि में खत्म हो गया लेकिन खत्म नहीं हुआ, कि आपको फीवर था, डॉक्टर ने दवाई दे दी, बुखार खत्म हो गया, आपको लगता है बुखार मिट गया, नहीं जी, वो अभी अंदर है, दिखाई नहीं पड़ रहा कि थर्मामीटर में नहीं आ रहा, बुखार है अंदर, मिटा नहीं है, अत्यंत अभाव नहीं हुआ है। आपका आप कैसे कह सकते हो मिटा नहीं है, अगर मिट गया होता तो दोबारा नहीं आता, आई बात समझ में, फीवर अगर मिट गया होता, अत्यंताभाव हो गया होता, सदा के लिए खत्म हो गया होता, तो फिर दोबारा नहीं आता। भूख लगती है, भूख लगती है, आज आप बोल नहीं रहे हो, बड़ा अजीब लग रहा है, पूजा 10 बजे करनी है, अभी थोड़ी करनी, टेंशन लो अभी से, भूख लगती है, भोजन करते हो तो भोजन करने के बाद में भूख मिट जाती है, आप कहते हो भूख खत्म हो गई, खत्म हुई लेकिन अत्यंता भाव नहीं हुआ, क्योंकि 4 घंटे के बाद में तो फिर लगती, गुजरातियों को तो शायद घंटे बर्बाद लगती हो, फिर लगती, भूख का लगना यह साबित करता है कि उसका अत्यंता भाव नहीं हुआ, और यह जीवन भर लगा हुआ है। ध्यान दो आप, जरा सोचो, अभी तक सोचते नहीं है, हम तो भोजन करते हैं, भूख मिट गई, मस्त हो गए, नाचने लगे, लेकिन फिर भूख, फिर सारी जिंदगी इसी में तो लगी है कि भरो, खाली हो गया, फिर भरो, फिर इसके अलावा क्या काम है, और है क्या, बोलो, करते करते भरते भरते थक जाओ तो सो जाओ, फिर जागो, फिर शुरू करो, वही गड्ढा खोदो फिर भरो, फिर खोदो फिर भरो, फिर खोदो फिर भरो, फायदा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग पूछते भजन करने से क्या फायदा, मैं मुझे आप बताओ भोजन करने से और फिर निकालने से क्या फायदा, या तो भरी लो या निकाल ही लो, कोई फायदा बताओ, समझाओ। आप अध्यात्म में इतने सारे सवाल करते हो, कभी कभी अपने व्यवहार में भी सवाल कर लिया करो, आप वेदांत में इतने सारे सवाल करते हो, ऐसा क्यों, इससे क्या होगा, इससे करने से क्या होगा, जरा तुम्हारे व्यवहार में भी तो सवाल करो कि ऐसा करने से क्या होता है, कि मोह करने से क्या फायदा होता है, बताओ जरा, कि पुत्र से आपने मोह कर लिया क्या फायदा, बोलो जरा बताओ। हम कहते हैं कि भगवान से प्रेम करो, आप कहते हो क्या फायदा, मैं कहता हूं पुत्र से प्रेम करते हो क्या फायदा होता है, बोलो, सवाल वहां क्यों नहीं उठाते, पूरी जिंदगी हम यही करते हैं। वेदांत कहता है अत्यंता भाव नहीं है दुख का, आपको महसूस हो रहा है कि मिटा। ध्यान रखना, यह महसूस इसलिए होता है ताकि आप लगे रहो। अगर भूख मिटने का आभास आपको न हो, अगर बुखार मिटने का आभास आपको न हो, तो डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएं। डॉक्टर जब आते हैं तभी डॉक्टरों की बातें करता हूं, समझ में। दुख का अगर बीमारी का अभाव हो जाए, डॉक्टर किस काम के? अभाव नहीं होता, आपको भ्रम होता है कि अब ठीक है। लेकिन ये डॉक्टर को भी नहीं पता कि ये ठीक तो हो गया लेकिन ये कल फिर बीमार नहीं पड़ेगा, ये गारंटी दे सकता है डॉक्टर? बोलो, कोई डॉक्टर ये गारंटी दे सकता है कि ये दवाई ले जाओ ठीक, और अगर जीवन में कभी बुखार आए तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारा फ्री ट्रीटमेंट करूंगा, दे सकता है? कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं। लेकिन वेदांत आपको यह गारंटी देता है, अध्यात्म आपको गारंटी देता है कि आप मेरी बात मानो और जीवन में कभी आपको दुख अनुभव हो जाए तो आप मुकदमा कर दीजिएगा कोर्ट में जाकर। क्यों? क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पता है कि असंभव है। वेदांत में अत्यंता भाव है, अत्यंता भाव हमेशा के लिए दुख मिटते हैं, आज के लिए नहीं। वेदांत ये नहीं कहता कि तुम्हारे दुख आज के लिए, ना ना ना, अभी के लिए नहीं मिटे हैं कि चलो जी थोड़ा आओ बैठो ध्यान करो जरा दो मिनट ध्यान किया, हा हा बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, बाद में फिर वही रोना धोना। वेदांत कहता है नहीं जी, चाहे तुम प्रेमपुरी आश्रम में हो और चाहे तुम घर में हो, चाहे तुम ट्रेन में हो, चाहे तुम बस में हो, दुख नाम की चीज आपको परेशान नहीं कर सकती अगर वेदांत वाक्यों में रमण करना आ गया तो। यह औषधि पी ली, ये दवाई ले ली, तो सारी बीमारियों का अत्यंता अभाव होगा, सारी बीमारियां सदा के लिए खत्म होगी, जैसे कि मीरा की सारी बीमारियां दूर हो गई। मीरा के जीवन में कोई कष्ट नहीं है, है कि कहीं दिखाई पड़ता है कि कहीं नजर आता है। हमको तो यह भी नहीं समझ में सुनने को मिला कि मीरा कभी बीमार भी पड़ी, पड़ी भी होगी, जरूर पड़ी होगी, लेकिन उसने चर्चा भी नहीं की क्योंकि करने के लिए फुर्सत नहीं है। बीमारी की चर्चा करने के लिए भी फुर्सत नहीं है भाई, बीमारी है ठीक है, व्यवहार के जैसे बीमारी हो गई, क्या चर्चा करना। क्यों ना मस्ती की चर्चा की जाए, क्यों ना आनंद की चर्चा की जाए, क्यों ना खुशी की चर्चा की जाए। मैं एक संत के पास गया, बीमार थे, मैं बहुत छोटा था, मुश्किल से 11-12 वर्ष का था, गुरुजी के साथ में था, स्वास्थ्य खराब था, हम लोग गए लेटे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, वो मोटा शरीर, पक्कड़ महात्मा, मध्य प्रदेश की घटना है छतरपुर के पास कहीं, और लेटे। मुझे अभी भी याद है, मैंने जीवन में उनको एक ही बार देखा, लेकिन मैं आपको क्या कहूं, पेड़ के नीचे और पलंग था, चौकी थी, उस पर पक्कड़ अवस्था में लेटे हुए मस्त महात्मा, बीमार थे। तो महाराज ने कहा चलो दर्शन करके आते हैं, तो हम लोग गए, लेकिन आप उनका चेहरा देखते, आहा, बीमारी में भी खिला हुआ, बीमारी में भी प्रसन्न, मस्त मुस्कुराते हुए महात्मा मिला, बीमारी में भी कराह नहीं रहा है, रो नहीं रहा है, खुश है, बड़ी बीमारी और खुश है। हमारे गुरुदेव भगवान ने पूछा, सुना है स्वास्थ्य गड़बड़ है, ठीक है? वो महात्मा मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहा कि महाराज जब घर बनाते हैं ना तो कभी खिड़की टूटती है, कभी दीवार के प्लास्टर छूटता है, तो कभी कुछ लगा ही रहता है, क्या परेशान होना, ये शरीर का स्वभाव है, जाने दो, इसकी चर्चा क्या करना। हम बैठे हैं, हम आए हैं, संत हैं, कुछ और किया जाए, कुछ मस्ती की बात हो, वाह क्या बात है। आहा, बीमारी में पड़ा हुआ आदमी जो खड़ा नहीं हो पा रहा है, जो बैठ नहीं पा रहा है, वो क्या कह रहा है कि कुछ मस्ती की बात होने दो, ये तो चलता ही है, जाने दो, कुछ मस्ती की चर्चा करो, छोड़ो। चलो ठीक है, आपने पूछा कि स्वास्थ्य कैसा है, हमने कह दिया हां खराब है, होगा क्या? वो तो खराब ही रहेगा। कि आपके पूछने से, कि हमारे कहने से उसमें कुछ बदलने वाला है नहीं, क्यों चर्चा की जाए? जिसकी चर्चा करने से, जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उसकी चर्चा करने से फायदा क्या? छोड़ो, कुछ आनंद की बात होने दो, कुछ कहो, कुछ ऐसा सुनाओ। ये रसो वही सह परमात्मा के रस की चर्चा करो, रसो वही सह परमात्मा के रस को कहो, उसको पिलाओ, उसमें थोड़ा मस्ती आने दो। वाह, है ना भागवत हो रही, हमारी पूरी हो गई, कोई टेंशन नहीं है। है ना? तो किसी का भी हो, क्या लेने देना। क्या कह रहा था? मस्ती, तो मस्ती कम नहीं। वो मैं, मेरा वाक्य है, मैं बोलता हूं। पिछले साल मैंने ये बहुत लिखवाया, न जाने कितने लोगों को, कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, मस्ती कम नहीं होनी चाहिए। इस वाक्य को जीवन में ढाल के देखो, स्लोगन बना लीजिए अपने जीवन का। तुम्हारी हर डायरी पर यह लिखा होना चाहिए, तुम्हारी हर लाइन पर, हर क्या बोलते हैं, सोच पर यह लिखा होना चाहिए कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन मस्ती कम नहीं होनी चाहिए। मस्ती वैसी ही रहनी चाहिए जैसे शराबी के जीवन में परिस्थितियां कैसी भी आए, उसका पीना नहीं छूटता। कि दुख आए तो भी पीता है, कि सुख आए तो भी, अब तो बोलो, दुख आए तो पीना छूट जाता है? कैसे पता नहीं? अच्छा, हम ही महात्मा लोग हैं, हमें सब पता होता है। सब पता होता है। और मालूम है भागवत में लिखा है, वासो यथा परिकृता मदिरा मदांधा, मदिरा मदांधा, भगवान सुखदेव को भी पता है। मदिरा मदांधा यानी जैसे शराबी अपनी मस्ती में भूल जाता है कि उसका कपड़ा कहां पड़ा है, ऐसे मस्त हो जाता है। तो कल चर्चा करेंगे वेदांत वाक्य सुधार मंत्र। चलिए वेदांत वाक्य में भ्रमण करते हैं, कहां तक भटकेंगे? आपको लगेगा ये कब तक भटकाओगे, इसमें भटकते रहो, क्या जाता क्या है। कल चर्चा करते हैं। सदगुरुदेव भगवान की।